نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم کریں گے پارہ نمبر 11 یعتذرون، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر 129 تک ہے. یعنی اس پورے پارے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سچے اور مخلص صحابہ کی توبہ کو قبول کیا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد آگے ہم دوسری صورتوں پہ چلیں گے. ہم پیچھے سے اگر اس کا سلسلہ جوڑیں تو آیت 93 تک ہم نے کچھ عذر اور بہانوں کی بات دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر سے کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹے تو وہ لوگ جو اپنے دل کے نفاق کی وجہ سے ساتھ نہیں گئے تھے، اب ان کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا. ایک طرف تو فائدوں کی خواہش تھی، جو غنیمت ملی اس میں سے، دوسری طرف اب ساتھ بھی تو رہنا ہے نا. اب نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ کیفیت. کچھ لوگ دنیا میں آپ کے ساتھ بس اتنا کو تعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ان کی سلام دعا اور الیکس لیک رہے. تو کچھ ایسی ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اب آیت 94 سے 96 میں دے دی. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الی، اذا رجعتم الیہم، یہ آپ کی طرف عذر بہانے کرتے ہوئے آئیں گے جب آپ ان کی طرف پلٹ کر آئیں گے. یعنی ابھی پہنچے نہیں تھے مدینہ میں، راستے میں ہی تھے، تو اس کا تذکرہ کر دیا. کیا کریے؟ کل تعتذروا، ان کو کہہ دیجئے کہ اب عذر نہ کرو، ہم تمہارے ان بہانوں پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دیں. یعنی اللہ جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس نے بتا دیا کہ تم میں سے کس کا عذر سچا تھا اور کس کا جھوٹا تھا، اور عن قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا، پھر تم پھیرے جاؤ گے اس غیب اور شہادت کو جاننے والے کی طرف، اور پس وہ تم کو خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور اس کتاب میں لوگوں کے ساتھ ان کے دل کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. اگر آپ ان آیات کو ذرا سا دیکھیں تو اس میں وہ لوگ جو نبی کے ارد گرد موجود تھے اور وہی مخلصین بھی تھے، وہی سابقون الاولون بننے والے لوگ بھی تھے، وہاں ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں. تو دلوں کی اقسام، سب سے پہلی جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، دل ہی نہیں، آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے، فائدہ حاصل نہیں کرتا. کہنے والی بھی اور سننے والے بھی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم صرف پڑھنا برائے پڑھنا ہی تو نہیں کر رہے؟ صرف یہ لفظ ہمارے کانوں تک ہی تو نہیں ٹکرا رہے؟ ایک بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح کی آواز تو نہیں جو ہم نے چلا دی؟ کیونکہ قرآن سن کر سمجھ نہ آئے، دل نہ بدلے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ. پھر ایک دوسری قسم کا دل ہے جو زندہ ہوتا ہے، اہلیت ہوتی ہے اس میں، لیکن پھر غفلت برتتا ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، نصیحت ہی نہیں حاصل ہوتی. اب آپ اس کو بھی ذرا سوچئے، کیونکہ آپ کا میرا دل انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ تو ہوگا. تو پھر تیسری قسم ہے، دل زندہ ہے، اہلیت بھی ہے، بھرپور توجہ بھی دی جا رہی ہے، حاضر دل فہم پر توجہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی کائنات کی نشانیوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد تھے، ان کے ناطے سے ان آیات میں یہی بات پڑھ رہے ہیں کہ ہم آج کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل کو چیک کریں. اللہ نہ کرے کہ آپ کا میرا دل پہلا والا ہو، کیونکہ یہ تو مردہ ہے. آپ دیکھیے کہ الیکٹرک رو، یعنی الیکٹریسٹی بند کر دی جائے، بجلی کی رو بند کر دی جائے، تو بڑے بڑے گیجٹ اور الیکٹرانکس بیکار ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ دل جس کے اندر روحانیت نہ ہو، جس کے اندر سوز نہ ہو، جس کے اندر گداس نہ ہو. اور یاد رکھیے، یہ پہلا دل کافر کا دل ہے، جانتے بوجھتے انکار کرنے والا، جس کو حق پہنچ گیا، جس کے سامنے حق پیش کر دیا گیا، لیکن اس کا چونکہ دل ہی بند ہے. اور آپ اس کو ایک بوٹل سے تصور میں لائیے کہ جس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے، اب ڈھکن پوری طرح بند ہے، آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، زمزم ڈال دیں، اندر ایک قطرہ نہیں جائے گا. یہ کافر کا دل گھٹا ہوا. اس کے برعکس ایک دوسرا ڈھکن تو کھلا ہوا ہے، جا بھی سکتا ہے، لیکن بوٹل کو ذرا ادھر سے ادھر رکھا ہوا ہے. آپ ٹیپ کے نیچے بوٹل رکھتے ہیں نا، تھوڑی سی سائڈ پہ رکھ دیں، पानी भी गिर रहा है, सब कुछ है, लेकिन उस बॉटल के अंदर कुछ नहीं जा रहा। तो ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर निफाक होता है, जो इधर उधर रहते हैं, जो फोकस्ड नहीं है, जो हर जगह जाना चाहते हैं, हर काम करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी अवेलेबल एवरीवेयर, सबको खुश रखो। बहरहाल असल में जो मतलूब दिल है वो तीसरा दिल है। अल्लाह ने सलाहियत भी दी है, तवज्जो भी है, शौक भी है और ज़ौक भी है। अल्लाह आपका मेरा दिल इसी किस्म के लोगों वाला बना दे। इसके बाद आयत नंबर 97 से 99 तक अल्लाह की राह में खर्च करने वाले दो किरदार हैं, और बात कुछ आराबियों की हो रही है। अल आराब व अशद कुफ्रम व निफाका, आराबी से मुराद बदवी, जैसे हमारे कल्चर में कहते हैं ना, देहाती, गांव में रहने वाले उजाट लोग हैं, जानवरों के साथ रहते हैं, फसलें उगाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनमें से अक्सर लोग कुफर और निफाक में बड़े सख्त होते हैं। वजह देखिए क्या लिखी हुई है, अल्लाह यालम हुदूद मा अनज़लल्लाहु अला रसूलिही, क्योंकि वो उन हदों को नहीं जानते जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से नाफिज की जाती हैं। यानी अल्लाह नाफिज करता है रसूल के ज़रिए या ख़ुद से करता है। क्या पता चला कि इल्म से दूरी दिल को सख्त कर देती है। इन्हीं में से किरदार है आयत 98 में, वमिनल आराब, और इन्हीं बदवियों में से कोई तो ऐसा है कि जो कुछ भी खर्च करता है, अगर कभी यानी मारे बांधे उसको कुछ ना कुछ तो कभी खर्च करना पड़ता है, तो मगरमा उसको जुर्माना समझता है। असल में अरबी ज़बान में मगरम टैक्स को भी कहते हैं, ज़बरदस्ती की चट्टी, टोल टैक्स, सड़कों पे जो लोग बनाकर एक जगह रखते हैं उसके लिए भी अलग आता है। यानी मारे बांधे खर्च कर भी दे तो गिनता ही रहता है, रो रो के ज़कात देता है, कहीं हिस्सा डालना पड़ जाए तो परेशान, और सात दिल की हालत के इंतज़ार करता है तुम्हारे ऊपर बुरे दिनों के आने की। अल्लाह कहते हैं इनको बता दो, अलैहिम दायरतु सऊ, इन्हीं के ऊपर बुरी गर्दिश आएगी, और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। तो ये तो वो दिल है कि जिसके अंदर ना ईमान है ना यकीन है। इसके बरक्स दूसरा किरदार आयत 99 में, वमिनल आराबी मैं यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन आराब में, इन बदवियों में, इन देहातियों में कोई ऐसा भी है कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है, और जो भी खर्च करता है उससे क्या पाता है, कुरुबात इंदल्लाह, अल्लाह का कुर्ब, तकर्रुब इलाही, अल्लाह मेरे मुझसे राज़ी हो जाए, और साथ ही साथ वसलावात रसूल, रसूल की दुआएं लेने का ज़रिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको खुशखबरी दे दो कि बेशक ये इनके लिए कुर्बत भी होगी, और अनकरीब अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा, क्योंकि वो खूब बख्शने वाला, मेहरबान करने वाला है। हम सब अपने ऊपर इसको लेकर सोचें, क्या मैं पहली किरदार हूँ या दूसरी। देखिए बड़े कहा करते थे कि जो काम करना है उसको खुशी से कीजिए। आपका मेरा कोई काम भी कर दे और रोता रहे, आप मेहमान बनकर किसी के घर गए और वो कहते हैं सुबह से बैठे ही नहीं, थक गई, कमर टूट गई, तो आपको वो 8-10 खाने जो टेबल पे रखे हुए हैं वो अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। बस इसी मिसाल को अपने लिए रखिएगा, जैसे हमें अच्छा नहीं लगता ना कि कोई हमारे लिए कुछ करे और दुख का इजहार करे, अल्लाह को भी नहीं अच्छा लगता। हमसे तो हो सकता है छुप ही जाए, कोई ना ही बोले, लेकिन दिल में परेशान हो, कब ये जाएगा मेहमान, कब मेरी जान छूटेगी। लेकिन अल्लाह कौन है, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। तो खुशी से कीजिए ये 4 दिन की ज़िंदगी जो अल्लाह ने आपको मुझे दे ही दी है, तो इसमें जो खर्च करें, और ख़र्च में सिर्फ माल नहीं होता, अब वक्त लगाते हैं, अब स्किल्स लगाते हैं, और आप घर खोल देते हैं अपने, और आप अपनी औलादों को लेकर निकलते हैं, खुशी खुशी कीजिए। फिर इसके बाद आगे तो बहुत ही प्यारा टारगेट है, आयत 100 फेमस आयत है सूरत की, वस्साबिकून अलअव्वलून, और सबकत ले जाने वाले, आगे आगे बढ़ने ले, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना पहलों में से भी पहले, फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट। कौन है वो? कुछ मुहाजरीन हैं और कुछ अंसार हैं, और वो लोग जिन्होंने उनकी पैरवी की एहसान से, इससे मुराद ताबईने कराम है, ये जो लफ्ज़ है ना इत्तबउहुम, इसी से लफ्ज़ ताबई भी है। क्या हुआ? रदी अल्लाह अन्हुम व रदुअन, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए, और तैयार की उनके लिए वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और हमेशा रहने वाले उनमें, हमेशा हमेश, यही है कामयाबी बहुत बड़ी। तो यहाँ तذکرہ है उन लोगों का जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत की। एक तो महाजरीन मक्का, जो कि बिल्कुल इब्तदाए इस्लाम से अल्लाह के नबी के साथ थे, आपके कदम के साथ कदम बढ़ाया, और आपके मिशन को अपना मिशन बनाया, और दूसरे उसके बाद अंसारे मदीना। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपने रस्तों में किसी को जल्दी मौका दे देता है, किसी को बाद में। मिसाल है कि आपका अपने एक बहन भाइयों में कौन सा नंबर है, कोई फर्स्ट होगा तो कोई लास्ट भी होगा, कोई मिडल में होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं हाय वो ये तो पुराने लोग हैं, ये तो शुरू से थे। नहीं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप एंड तक साथ थे कि नहीं। अब एक बच्चा जो घर में है ही सबसे छोटा, वो रोए हाय मैं तो सबसे छोटा हूँ। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के आगाज़ से लेके आखिरी दम तक अपने माँ बाप के लिए मुखलिस रहें। अब ये है दी बेस्ट टिप। अभी आप देखेंगे कि एक और गिरोह आपके मेरे सामने आएगा, आयत 101 से 103, मिले जुले अमल करने वाले, इसमें से ढूंढिए खुद को। अल्लाह फरमाते हैं, वमिन मन खौलकुम मिनल आराब, आपके इर्द गिर्द रहने वाले बदवियों में कुछ लोग मुनाफिक हैं, और कुछ मदीना वालों में से भी ऐसे हैं, मरद वाले निफाक, बहुत होशियार हो गए हैं निफाक पे, यानी इतने एक्सपर्ट हैं कि अपना निफाक छुपा लेते हैं। ये कैसे छुपाते हैं, ये अब सूरत मुनाफिकून में पढ़ेंगे। चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें, अब्दुल्ला बिन उबई जुमे की नमाज से पहले मस्जिद नबी के बाहर आके खड़ा हो जाता, लोगों ये अल्लाह के नबी हैं, जल्दी आओ, ये बहुत अच्छे हैं। भाई अब तो वो आ ही गए, आपने अगर ये कॉल देनी थी तो आप बाजार में खड़े होकर देते, लेकिन अल्लाह के नबी के सामने सामने रहना चाहता था। क्या आप उसे खुश रहे, मुनाफिक को अल्लाह से ज़्यादा रसूल को, या उस वक्त में जो भी को उनके सामने उनकी खुशी मकसूद होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप उनको नहीं जानते, हम जानते हैं उनको। हम उनको अजाब देंगे दो बार, फिर वो फेरे जाएंगे दर्दनाक अजाब की तरफ। अब ये है वो लोग जिनके दिल खोटे हैं, अल्लाह ना करे आप में से कोई हो, मेरे में से कोई हो। एक तीसरा अगला गिरोह देखिए आयत 102 में, वाखरूना तरफू बि जुनूबिहिम, इनको कहते हैं मोतरफीन। मोतरफीन एतराफ़ करने वाले, यानी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एतराफ़ किया, कन्फेस करते हैं, किसका भी जुनूबिहिम, गुनाह हो भी जाता है, फिर अल्लाह से कहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, अबू लक भी ज़म्बी लेक। आप सैयदुल इस्तग़फ़ार में ये जुमला पढ़ते होंगे, अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों का इकरार करती हूँ, अल्लाह तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ, है ना। हाल के इनका खलत व अमलन सालेहन व आखरा सैयन, इन्होंने मिला जुला लिए अच्छे अमाल को भी और बुरे अमाल को भी। एक खिचड़ी पकाई हुई है, अच्छे भी करी जा रहे हैं और बुरे भी नहीं छोड़ रहे। आप देखिए कि आप एसी चला दें और दरवाजे भी खोल दें, आप हीट भी खोल दें और दूसरी तरफ आप पंखा भी लगा दें, ये जो गर्म सर्द होना होता है ना, ये बंदे को बीमार कर देता है। इसी तरह कुछ लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं, उनके दिलों में बिल्कुल निफाक नहीं होता। आप इनका एक नाम लिख सकती हैं, कमज़ोर ईमान वाले। याद रखिए कि इंसान एकदम मुनाफिक नहीं बनता, पहले ईमान कम होते होते इतना कमज़ोर होता है जैसे एनेमिक बंदा, हेमोग्लोबिन की कमी, जिसमें विटामिन डी कोई नहीं है, तो ऐसा शख्स फिर ऐसे ऐसे बीमारियों का शिकार होता जाएगा ना। इसी तरह जब आप ईमान की नरिशमेंट नहीं करते, ईमान को बढ़ाने वाले काम नहीं करते ना, तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर ईमान कमज़ोर होने लगता है, बेचारा भूखा गरीब ईमान हो जाता है। और बहुत सारे लोग आज आपको अपने इर्द गिर्द भूखे दिखते होंगे, सड़कों पे हैं, उनकी आंखों में हल्के पड़े हैं। यकीन करें, इस मुल्क में पेट के भूखों से ज़्यादा ईमान के भूखे लोग हैं। उनका उनका कह लीजिए कि माली तौर पे इतना इस्तेहसाल नहीं हुआ जितना उनके ईमान का इस्तेहसाल हुआ है। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, सल्लल्लाहु यतूबा अलैहिम, शायद अल्लाह इनकी तौबा कबूल कर ले क्योंकि वो है ही बख्शने वाला। ऐसे लोगों के साथ आप क्या कीजिए, खुस मिन अमवालिहिम सदका, आप इनसे सदका लिया करें ताकि इनको पाक कर दिया जाए और इनका तज़किया कर दिया जाए, और फिर इनके लिए दुआ भी किया करें क्योंकि आपकी दुआ इनके दिल को सुकून देगी और अल्लाह सुनने और जानने वाला। यानी ऐसे बेचारे इधर के उधर लुढ़कने भुड़कने वाले, कभी नेकियां कभी बदियां, इनके साथ आप ऐसा मामला करें कि जिससे इनका मोरल बुलंद हो। इनको दुआएं दिया करें, इनकी छोटी छोटी नेकियों पे आप इनको दुआएं दिया करें, आप इनको पाक करने की कोशिश करें, अपनी बातों से इनका तज़किया करें ताकि इनका ईमान बढ़े। जैसे ड्रिप नहीं लगवा दी जाती, कभी कभी ऐसा होता है किसी को डायरिया हो गया, खाया नहीं जा रहा, पेट में मसला है, तो आप कहते हैं नहीं इसको खाना नहीं, तो इसको ड्रिप लगा दो। ये जो दुआएं होती हैं ना, ये ड्रिप का काम देती हैं। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, दुआएं कीजिए, हम दुआएं मांगते हैं बस, या फिर इससे भी ज़्यादा मांगते भी कोई नहीं, हम दुआएं पढ़ते हैं, और वो भी किताब खोल के, और ख़ास तौर पर तवाफ़ करते हुए पहले चक्कर की दुआ और दूसरे की, और टकरा रहे होते हैं दूसरों से, और कोरस में एक पूरे कह लीजिए कि पूरे ग्रुप की तरह हम दुआएं मांगते हैं, तो ऐसे तो नहीं होती। लेकिन इस आयत के साथ एक बड़ा प्यारा वाक़या, एक सहाबी थे तो उन्होंने कुरान पाक में 70वें पारे में सूरत अंबिया की एक आयत पढ़ी कि फ़ी ही ज़िक्रुकुम, इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है। कहने लगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारा जिक्र है तो किधर है, ढूंढने लग गए। जब पीछे आयत गुजरी है साबिकून अलव्वलून, के हर काम में आगे बढ़ने वाले, कहेंगे ये तो मैं नहीं हूँ, यदि इतना नेक तो नहीं हूँ कि मैं हर नेकी में ही आगे हूँ। फिर आगे जाके कुफर वालों की बात पड़ी कि वो तो बिल्कुल ही कोई अमल ही नहीं करते, कहा मैं ये भी नहीं हूँ। और आखिर में जब इस आयत पे आए ना, आयत 102 में, कि खलत व अमलन सालिहन वाखर सैयन, कहने लगे अल्लाह मैंने अपना अपने आप को पा लिया, ये मैं हूँ। आज हम मुसलमानों में से शरीफ और नोबल फैमिलीज, बल्कि दीनदार लोगों में से अक्सरियत की ये है। मैं उनकी बात नहीं करती कि जिनको अभी इतना भी नसीब नहीं हुआ, जो फेस के लंबरदार, जो दुनिया में न्यूडिटी फैलाने वाले, जो दुनिया में गैर इस्लाम को आम करने वाले। हम आम लोगों को भी देखें तो वो कहते हैं ना कि निकलती हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां बनकर। गाने की आदत भी है और सुबह कुरान की तिलावत भी है, जमजम का भी शौक है और छुटती नहीं मुंह को लगी हुई। हर जगह वो पाए जाते हैं, वो दर्स में भी होंगे, वो मस्जिद में भी होंगे और वो क्लब में भी होंगे, कहीं खुशी का नाम कहीं मजबूरी का नाम। तो इस पे आप देखिए असाब का लफ्ज़ है, गो कि अल्लाह ताला के लिए तो असाब भी यकीनी है, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ करे। तो आपको मुझे क्या करना चाहिए, अपग्रेड योर सेल्फ। देखिए आज के दौर में बड़ा लफ्ज़ है, बेसिक पैकेज ले लें, अच्छा बाद में आप अपग्रेड करा लें। शुरू में आप मिनिमम मिनट्स का एक फ़ोन का पैकेज ले लें, अगर लगता है कि थोड़े हैं तो उसको अपग्रेड करा लें। तो आज लिखिए हमने अपने ईमान को अपग्रेड करना है इंशाअल्लाह ताला। और सूरह तौबा पे ना हुआ ना, तो फिर आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा आगे जाकर मजीद सीखने का। उसके बाद आयत 104 से 106 में टॉपिक क्या है, अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाते हैं। अलम यालमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबा, क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह तौबा कबूल करता है अपने बंदों की और सदके लेता है, यानी कबूल करता है उनकी हसनात को, और बेशक अल्लाह वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। आप कह दीजिए अमल करो, पसंद करीब अल्लाह तुम्हारे आमाल को भी देखेगा और उसका रसूल भी देखेगा और ईमान वाले भी देखेंगे, यानी आगे तुम क्या करते हो इसको देखा जाएगा। फिर तुम फेर दिए जाओगे गैब और शहादत को जानने वाले की तरफ, बस वो खबरें देगा तुमको जो तुम अमल करते थे। यहाँ पे वो बात जो पीछे से थी ना, उसकी बात है कि अगर खलत तो अमलन सालेहन है ना, तो कोई बात नहीं, साथ ही तौबा कर लिया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमसे कोई गलत काम हो जाए, गुनाह हो जाए, तो उसके पीछे ही नेकी कर लो। तुम्हारी नेकियाँ इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, तुम्हारी नेकियाँ तुम्हारे गुनाहों को रोक देंगी। और एक वक्त आएगा कि तुम्हें खुद ही शर्म आएगी। तो ये उस सवाल का जवाब है जो अक्सर लोग कहते हैं कि हम कोशिश भी करते हैं फिर भी तौबा करते हैं फिर गुनाह हो जाते हैं। अल्लाह कहते हैं फिर नेकी कर लो, फिर गुनाह हुआ फिर तौबा कर लो। देखिए इसको समझिएगा, हम सब अपनी जिस्मानी तहारत का बहुत ख्याल रखते हैं, सुबह घर मर से मर्द निकलते हैं नहा धो के साफ़ सुथरे होके। हर इंसान, आपके बच्चे, कोशिश होनी चाहिए कि वो साफ़ सुथरा हो, शावर लेके निकले, लेकिन दिन भर में पसीना भी आएगा, मट्टी भी पड़ेगी, कुछ भाग दौड़ होगी, फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर इंसान फ्रेश फील नहीं करता। क्या करते हैं आप, जाकर शावर ले लें। ये जो तौबा है ना, ये शावर है, और ये जो गिल्ट होता है ना गुनाहों का, ये मैल है, इसको उतार दीजिए। तो हमेशा लोग वो जो अभी नेकियों की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आपके टीनेजर बच्चे हैं या अभी वो आपकी दोस्त हैं जिसने नया नया कुरान सुनना शुरू किया, तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे तनकीद ना किया करें कि तुम्हारा एक बाल दिख रहा था, या तुम स्कार्फ पहन के गीबत कर रही थी, या तुम दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हो। ऐसी बातें लोगों के दिलों को खट्टा करती हैं। आगे देखेंगे ना, तो आयत 106 में अब एक तीसरा गिरोह है, वा खरू न मुरजऊ न लिया अमरिल्ला, ये मुरजऊन है, उम्मीदवार है, रिजा से है। इम्मा युअज़्ज़िबु हम, शायद अल्लाह उनको पकड़ ले यानी अजाब दे, या फिर उनकी तौबा कबूल कर ले, और अल्लाह तो अलीमुन हकीम है। क्या पता चला, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये अबू लबाबा के बारे में आयत आई थी कि कैसे उनसे एक हल्की सी गलती हुई और उन्होंने खुद को जाकर एक स्तून में बांध दिया कि जब तक नबी सल्लम अपने हाथ से मुझे नहीं खोलेंगे मैं नहीं हटूंगा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि सहाबा का ईमान क्या था, और उनको तो ऐसे लगता है ट्रांसपेरेंट केस में रखा हुआ अपना नामे अमल दिखता था। आप देखिए ना कि कॉकरोच और ऐसी गंदी चीज़ें खुले किसी मर्तबान में भी रखी होंगी ना, तो आपको देख के खौफ आएगा, आप उस पर गोल्डन पेपर डाल दें तो पता भी नहीं चलेगा। तकवा पता क्या है, कि इंसान को अपने कॉकरोच दिखे, अपने गुनाह उसको सांप लगे, बिच्छू लगे, तो चैन कैसे आएगा। आज भी आप देखिए कि जो लोग गुनाह करके इंजॉय करते हैं ना, उन्होंने ऊपर गोल्डन केस लगाया हुआ है, बहानों का, मजबूरियों का। आज का दौर है वो दौर, ये दौर, तो लिहाजा यहाँ तक की बात से क्या पता चला कि आपने मैंने अपने आप को किधर फिट करना है? अस्साबिकून अल्अवलून, जब नेकी का मौका आए, बिस्मिल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नो इफ्स नो बट्स, हुक्म मिला बिस्मिल्लाह, सोचेंगे, देखेंगे, अच्छा देखते हैं, नहीं इससे फिर इंसान के हौसले टूटते हैं। हय्या अलस सला की आवाज़ आई, फौरन वुजू कीजिए। आप देखेंगे कि आप वक्त पे नमाज़ पढ़ेंगे ना तो इजी होगी, ज़रा सा डिले कर दें तो वही नमाज़ मुश्किल हो जाती है।